रात के लगभग 11 बज रहे थे। अयान किसी रेस्टोरेंट में बैठा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था और किसी के आने का इंतजार कर रहा था। अयान की नज़रें रेस्टोरेंट के दरवाजे पर टिकी हुई थीं। अयान पिछले आधे घंटे से वहां किसी के आने का इंतजार कर रहा था। इस वजह से उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। हद है यार, मुझे लगा था आज जल्दी फ्री हो गया तो रायशा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। मैंने कहा था रुद्र से कि टाइम पर आए, लेकिन वो अभी तक नहीं आया, अयान ने झुंझला कर कहा। वो वहां आयु के भाई रुद्र के आने का इंतजार कर रहा था। टेबल पर आयु के आज कराई टेस्ट की रिपोर्ट्स पड़ी थीं। जैसे ही रुद्र ने रेस्टोरेंट में एंट्री ली, अयान के चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। रुद्र वहां उसके पास आया और चेयर पर बैठते हुए बोला, आई एम सो सॉरी यार, ट्रैफिक में फंस गया था। तुम्हारे इस ट्रैफिक में फंसने के चक्कर में मेरा काफी टाइम वेस्ट हो गया, अयान ने कहा। फिर उसने वेटर को बुलाया और उन दोनों के लिए कॉफी और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। हम कल भी तो मिल सकते थे, या संडे को। तुमने मुझे जल्दबाजी में मिलने के लिए क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? रुद्र ने पूछा। अयान ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और गंभीर चेहरे के साथ कहा, आई विश कि मैं ये कह पाता कि सब ठीक है। वो तो मैं तभी समझ गया था जब तुमने मुझे कॉल करके अर्जेंटली मिलने आने को कहा था। अयान की बात सुनकर रुद्र भी परेशान हो गया। उसने उसी लहजे में कहा, बात आयु से जुड़ी हुई है ना, घर में भी सब उसे लेकर परेशान है। वो ठीक से घर पर नहीं आती, कोई कुछ कहता है तो उल्टा बहस करने लगती है। तुम्हारे फैमिली मैटर्स में मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, वो तुम खुद देख लेना। बस एक डॉक्टर और उसके खास दोस्त होते के नाते मुझे छुपाना सही नहीं लगा, बोलते हुए अयान ने रिपोर्ट्स खोलकर रुद्र को थमाई। उसे देखते हुए रुद्र परेशान हो गया। वो चुपचाप बैठा था। तभी अयान फिर बोला, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है रुद्र, स्ट्रेस लेने की वजह से तबीयत बिगड़ रही है। ऊपर से कुछ खा पी नहीं रही, दवाइयां तक टाइम पर नहीं ले रही। HB लो है, BP लो रहता है, इनसोम्नियाक हो रही है वो। अगर यही चलता रहा तो, बोलते हुए अयान रुक गया। रुद्र और अयान दोनों ही आयु की हेल्थ कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ थे। रुद्र ने अयान की बात को पूरा करते हुए कहा, तो उसकी कंडीशन बुरी तरह बिगड़ जाएगी और संभलने में भी टाइम लगेगा। उसकी बॉडी एक हार्ड ट्रीटमेंट को नहीं झेल सकती है, तो रिकवरी सेशन लंबा होने की वजह से वो डिप्रेशन में चली जाएगी। रुद्र ने वो सब पॉसिबिलिटीज बताई जिनसे आयु को गुजरना पड़ सकता था। हैरानी तो मुझे इस बात की हो रही है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी तुम लोग लापरवाही कर रहे हो। आयु बिल्कुल ठीक कहती है, अनु के जाने के बाद उसकी लाइफ रुक गई है। वही थी जो उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। अयान की बातों से उसकी नाराजगी साफ नजर आ रही थी। रुद्र ने कुछ नहीं कहा। कुछ पल के लिए उसकी नजरें झुक गईं, फिर उसने नजरें ऊपर उठाकर धीमी आवाज में कहा, बीते कुछ सालों में हम लोगों के रिश्तों में एक अजीब सी दूरी आ गई है। तुम हॉस्पिटल में पूरा दिन उसके साथ होते थे तो दिल को तसल्ली रहती थी, फिर अनु को जब भी टाइम मिलता था वो खुद से पहले उसका ध्यान रखती थी, उसके पल पल की खबर रखती थी। मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। आयु मुझे रायशा जितनी ही प्यारी है, लेकिन अब मैं चाहकर भी उसकी केयर नहीं कर पा रहा हूँ। आयु ने अपनी नाइट शिफ्ट करवा ली है, इस चक्कर में ना तो वो ठीक से सो पाती है और ना ही खाने पीने का ध्यान रखती है। हमारा मिलना भी इतना नहीं हो पाता, अयान ने बताया। मैं मॉम से भी इस बारे में बात नहीं कर सकता, उनका बिहेवियर हमेशा से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा है। उन्हें पता चला तो वो सब कुछ प्यार से करवाने की बजाय डांट कर करवाएगी। मैं सिमरन से बात करता हूँ, वो देख लेगी। एंड थैंक्स फॉर टेलिंग एवरीथिंग, रुद्र ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। आयु का फ्रेंड होने की वजह से अयान काफी बार रुद्र से मिल चुका था और उन दोनों के बीच भी दोस्ती का रिश्ता बन गया था। आयु की हेल्थ रिपोर्ट देने के बाद उन दोनों ने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और फिर कॉफी पीने के बाद दोनों अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। कबीर आरफ के घर पर था। आरफ के अचानक जाने की वजह से वो परेशान था और गार्डन में इधर उधर चहलकदमी करते हुए खुद से बातें कर रहा था। एक बार कॉल करके ये तो बता देते कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कब तक आएंगे, लेकिन कुछ नहीं बताया। माहिरा मैम ने अचानक से मैसेज कर दिया कि सब संभाल लेना और फिर उसके बाद से दोनों का फोन बन जा रहा है। अब मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? किसी और का ना सही, दादी का सोचकर तो रुक जाते ना सर, कबीर ने परेशान स्वर में कहा। आरफ के जाने के बाद से सब कुछ उसे ही संभालना पड़ रहा था। माहिरा ने कबीर को बस एक मैसेज छोड़ा था, उसमें उसने उसे कुछ नहीं बताया और उसके बाद से ही उन दोनों का फोन बन जा रहा था। कबीर आगे सब कैसे देखेगा इस बारे में सोच ही रहा था, तभी गौरवी जी ने उसे दूर से आवाज लगाई, चलो डिनर के लिए आ जाओ और आरफ को भी कॉल करके बोलो कि जल्दी घर पहुंचे, उसका ये रोज रोज देर से आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आधी रात को खाना खाना पड़ता है। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया और गौरवी जी के अंदर जाने के बाद खुद से बड़बड़ा कर कहा,
पसंद तो मुझे भी नहीं है, पर क्या कर सकते हैं। अफसोस तो इस बात का है कि मैं आपसे और आरव सर से माहिरा मैम के जरिए मिला। जब से होश संभाला था एक ही बात पता थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई है जो मुझे संभाल सकता है तो वो लुथरा फैमिली है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे खुद का वजूद महसूस होने लगा। जहाँ दादी ने इतना प्यार दिया, फिर मुझे युवानी मिली, और आरव सर भी तो है, वो चाहे जैसे भी हों पर उनके साथ रहने की आदत हो गई है। कबीर अपनी परेशानी में काफी कुछ बोल गया। वो अनाथ था जिसे लूथरा फैमिली ने पाला था। माहिरा का असिस्टेंट और खास आदमी होने की वजह से उसने उसे आरव के पास भेज दिया, और यहाँ आने के बाद उसकी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए थे। कुछ देर वहाँ टहलने के बाद कबीर को अंदर जाना ही पड़ा। अंदर जाते हुए वो अपने मन में बोला, वेयर आर यू आरव सर, जहाँ भी हो प्लीज जल्दी आ जाना। कबीर अंदर पहुंचा और डिनर के लिए डाइनिंग एरिया में गया। गौरवी जी वहाँ उसका इंतजार कर रही थी। कबीर के बैठते ही गौरवी जी ने कहा, आरव कहाँ है, तुम्हारी उससे बात हुई, कब तक आएगा वो? वो बिजनेस टूर पर गए हैं माहिरा मैम के साथ, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। कबीर को उस वक्त जो भी समझ आया उसने गौरवी जी को बता दिया। हाँ ठीक है, तो हम उसका वेट कर लेते हैं, उसे बस एक मैसेज छोड़ दो कि हम दोनों के लिए उसका वेट कर रहे हैं, गौरवी ने कहा। उन्हें लगा कि आरव कुछ घंटे के लिए ही बाहर गया होगा। दादी वो आउट ऑफ कंट्री गए हैं, उन्हें कुछ दिनों का टाइम लगेगा, अभी तक तो ये भी कन्फर्म नहीं है वो वापस कब तक लौटेंगे, कबीर ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनने के बाद गौरवी जी ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपने और कबीर के प्लेट में खाना सर्व कर रही थी। उनकी ये चुप्पी कबीर को ज्यादा परेशान कर रही थी। काफी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा तो कबीर झुंझलाकर बोला, दादी प्लीज कुछ तो बोलिए, आपके चुप रहने से मेरी हार्टबीट बढ़ रही है। तो क्या बोलूं, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी वो बॉस माहिरा लूथरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। भर भर के घमंड लेकर घूमती है, मेरे आरव पर तो ऐसे हक जताती है जैसे आरव ने खुद को उसके नाम कर दिया हो, गौरवी जी ने हल्के गुस्से में कहा। माहिरा से पहली बार मिलने के बाद ही उन्होंने उसे लेकर ये ओपिनियन बना लिया था, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई थी।
अब क्या कहूँ दादी आपको, उन्होंने सच में खुद को माहिरा मैम के नाम कर दिया है, कबीर ने अपने मन में कहा। फिर उसने गौरवी जी की तरफ देखकर शांत लहजे में कहा, चिंता मत कीजिए दादी, वो सिर्फ बिजनेस पार्टनर है और लाइफ पार्टनर कभी नहीं बनेंगे। आई विश ऐसा ही हो। वैसे भी मेरे आरव को लाइट एम्बर ब्राउन आइज वाली लड़कियां पसंद हैं, तो वो उस माहिरा लूथरा के पीछे ले नहीं जाएगा। जैसे ही गौरवी जी ने लाइट एम्बर ब्राउन आइज वाली लड़कियां कहा, कबीर की आंखों के सामने सबसे पहले आयु का चेहरा घूम गया। लाइट एम्बर ब्राउन आइज वाली लड़कियां, कबीर ने धीरे से दोहराया। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। हॉस्पिटल में आरव आयु को जिस हिसाब से अटेंशन दे रहा था वो चीज उसने भी नोटिस की थी। कबीर ये बात भी जानता था कि आरव कोई भी बात बेवजह नहीं कहता। अगर उसने गौरवी जी के सामने कोई खास चीज पॉइंट आउट करके कही है तो जरूर कोई बात होगी। वो भी माहिरा को कुछ खास पसंद नहीं करता था। ऐसे में आरव के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनकर उसे दिल से दिज में राहत महसूस हो रही थी।